बहते हुए पानी का रास्ता रोक लेने से क्या पानी का बहना रुक जाता है? नहीं, वो अपने लिए दूसरा रास्ता बना लेता है। प्रकृति में कुछ बातों का होना तय है, हम कोशिश करके उनके घटने का तरीका बदल सकते हैं मगर उन्हें घटने से रोक नहीं सकते हैं। समय की दूसरी धारा में काल शंकु अनंत को नहीं मिला, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 15 फरवरी को घटने वाली घटनाएं रुक जाएंगी, वो तो घटकर रहेंगी। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी काल शंकु, दूसरा अध्याय, भाग 3। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। अनंत के समय में वापस लौटने के साथ ही उसकी याददाश्त से वो 5 दिन धुंधला गए थे। जो कुछ उस समय घटा था वो उसे एक सपने की तरह याद आ रहा था। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुक सकता, वो तो पानी की तरह अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। और हुआ यूं कि इस बार अनंत की जगह सुशांत ने काल शंकु को ढूंढ लिया और अनंत, उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसी की कहानी एक बार फिर से उसके सामने घट रही थी और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हां, उसे ये जरूर लग रहा था कि इस सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसने अपने साथियों से इस सब को छोड़कर दिल्ली लौटने के लिए कह दिया। सुशांत ने भी अगले दिन सुबह दिल्ली चलने के लिए हामी भर दी, मगर इंसान के कह देने भर से क्या हो जाता है, समय तो अपनी रफ्तार से चलता है। रात को फिर से वही सब हुआ जो उस रात को होना था। आधी रात के बाद काल शंकु में कंपन शुरू हो गए। सुशांत और राज दोनों हैरानी के साथ उस शंकु को देख रहे थे। सुशांत ने आश्चर्य से कहा, ये वाइब्रेशन इस कोन में हो रहे हैं और ये क्या? शंकु पर उकेरे गए बिंदु और घुमावदार दरार भी कंपनों के साथ चमक रहे थे। सुशांत उस कोन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राज ने इशारे से उसे रोक दिया। सुशांत ने भी उसकी बात मानकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो दोनों बड़े गौर से कंपनों के साथ चमक रहे शंकु को देख रहे थे। राज के मुंह से निकल पड़ा, सर व्हाट इज दिस? तभी एक जोरदार आवाज से दोनों कांप उठे। पास में ही कहीं बिजली गिरी थी और बिजली कड़कने की आवाज के साथ ही उस शंकु में एक तेज चमक उठी, जिसकी वजह से दोनों थोड़ा पीछे हट गए। बाहर तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो गया। सुशांत और राज दोनों इंतजार कर रहे थे कि वापस से इस शंकु में कोई हरकत हो, लेकिन अब शंकु एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। थोड़ी देर बाद सुशांत ने सावधानी से उस शंकु को हाथ में उठा लिया। वो मन ही मन कुछ निश्चय कर चुका था। 11 फरवरी 2019 की सुबह फोन के अलार्म ने अनंत को नींद से जगा दिया। थोड़ी देर में ही वो तैयार होकर बाहर आ चुका था। बाहर चारों तरफ पानी देखकर उसे ताज्जुब हुआ। रात की बारिश की वजह से माहौल में ठंड घुल चुकी थी, लेकिन अनंत को गहरी नींद में होने के कारण कुछ पता नहीं लगा। गर्म चाय का कप लेकर उसने गेस्ट हाउस के मालिक से पूछा, रात को बारिश हुई थी क्या? सर, रात को इतनी तेज बारिश हुई आपको पता तक नहीं लगा? इतनी तेज बारिश तो मैंने बरसों में नहीं देखी, और वो भी इस मौसम में। ये तो फरवरी का महीना है। उसकी बातों ने अनंत को फिर से परेशान कर दिया। उसे फिर से लग रहा था कि ये वाकया उसके साथ घट चुका है। तभी सुशांत की आवाज उसके कानों से टकराई, अनंत। अनंत ने सुशांत की तरफ देखा, वो हड़बड़ी में उसकी तरफ ही आ रहा था। अनंत ने पूछा, क्या हुआ? सुशांत ने छूटते ही जवाब दिया, बॉस लफड़ा हो गया, फोर्ट वाला हिस्सा रीशूट करना पड़ेगा। रीशूट? मगर क्यों? यार शॉट बिगड़ गए, शायद कैमरा की कोई प्रॉब्लम है। अनंत को उसकी बात समझ नहीं आई, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, और शॉट तो हमने चेक कर लिए थे। सुशांत ने जवाब दिया, नहीं यार, हमने शॉट कहां चेक किए थे, जल्दबाजी में यह काम रह गया। अनंत को गुस्सा आ गया। यार इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, इतने टाइम से शूट कर रहे हैं, पहली बार थोड़ी ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, अब कैसे मैनेज करेंगे, हमें आज एनी हाउ चैनल में टेप सबमिट कराने हैं, वैसे भी हम अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। सुशांत ने बात को संभालते हुए कहा, एक ऑप्शन है, फोर्ट में एक दिन की शूटिंग है, उसके अलावा सारी फुटेज चैनल पहुंचा देते हैं, मैं राज के साथ यहां रुककर शूट पूरा करवा लेता हूं, तू ज्ञान के साथ दिल्ली निकल जा। अनंत ने अनमने ढंग से कहा, नहीं नहीं नहीं, हम उस पार्ट को छोड़ते हैं, फोर्ट वाले पार्ट के बिना भी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। सुशांत ने कहा, यार क्या बात कर रहा है तू, हम उस पार्ट को नहीं छोड़ सकते, चैनल की स्पेशल डिमांड थी किले के शॉट्स के लिए, तूने चेक नहीं किया क्या? अनंत कुछ गुस्सा हो गया, मैंने तुझे कहा था हमें यहां से जल्द निकलना है, तूने कहा तो था, बट अब क्या कर सकते हैं, हमें से एक बंदे को यहां रुकना पड़ेगा और दूसरे बंदे को दिल्ली में नलिनी को फेस करना होगा, एंड यू नो आई कांट फेस नलिनी, इसलिए मैं यहां रुकूंगा, तू दिल्ली में नलिनी को फेस कर। अनंत को इस वक्त गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वाकई में उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सुशांत की बात मान ली, ठीक है लेकिन कल सुबह तुम लोग यहां से निकल रहे हो। सुशांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बॉस, कल शाम को मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा विद फुटेज। अनंत ने सुशांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो ज्ञान के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। उसके रवाना होते ही सुशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने राज की तरफ देखा जो थोड़ा डर रहा था। सुशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल काम पर लगते हैं। राज जवाब देना चाहता था, लेकिन अनंत से झूठ बोलने की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हुई। दोपहर के 3 बज चुके थे। अनंत ने दिल्ली में चैनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट्री की फुटेज सबमिट कर दी थी, साथ ही यह भी बता दिया कि कुछ शॉट्स बाकी बच गए हैं जिन्हें वो अगले दिन तक सबमिट करा देंगे। चैनल में अनंत का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी नलिनी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो शायद किसी मीटिंग में थी। आखिरकार अनंत वहां से बाहर निकल रहा था कि तभी नलिनी की आवाज ने उसे रोक लिया, अनंत। अनंत ने पीछे मुड़कर देखा तो नलिनी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने भी पलटकर मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया, लेकिन अनंत को कुछ महसूस हुआ, कुछ अलग सा एहसास, जैसे किसी से मिलने की गहरी इच्छा किसी के मन में हो और उससे मुलाकात हो जाए। कुछ ऐसा ही अनंत को महसूस हो रहा था। यह एहसास किसी नशे की तरह अनंत पर हावी हुआ था। उसे लग रहा था कि वो यही तो चाहता था, नलिनी से मिलना, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब अनंत के पास नहीं था। असल में सारी बातों के साथ वो ये भी भूल चुका था कि पिछली बार 15 फरवरी की रात उसने सुशांत के सामने नलिनी के बारे में बात की थी। 15 फरवरी की रात, यानी वो रात जब उन्हें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पता नहीं वो जिंदा बचेंगे या नहीं। ऐसे वक्त में इंसान फालतू बातें नहीं करता है, ऐसे वक्त में इंसान केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जो उसकी जिंदगी में अहमियत रखती है। और भले ही अनंत उस रात की बात भूल चुका हो, लेकिन यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके दिलो दिमाग में बस चुकी थी। तब तक नलिनी उसके पास आ चुकी थी। उसने अनंत से पूछा, सो हाउ वाज द शूट एंड वेयर इज योर बडी अशांत, आई मीन सुशांत। यह कहकर नलिनी हंसने लगी। अनंत ने भी उसकी हंसी में साथ दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नलिनी को भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसने इधर उधर की बातें छेड़ दी थी और अनंत वो तो बस मंत्रमुग्ध सा उसकी आवाज सुने जा रहा था। आखिर में नलिनी ने कहा, हे व्हाट हैपन टू यू? अनंत थोड़ा सकपकाया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, क्यों क्या हुआ? अरे यार आज तुम इतने चुप क्यों हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो? अनंत ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं, फिर आज मेरे पास बोलने को कुछ है भी तो नहीं। अनंत की बात सुनकर नलिनी जोर से हंसने लगी। तभी उसे जैसे कुछ याद आया, ओके आई हैव टू गो, मैं फुटेज चेक करके बात करती हूं। ओके, अनंत वहां से जाने लगा, लेकिन उसका मन उसे कुछ और कह रहा था, इसलिए आज उसके कदम नहीं उठ रहे थे। फिर उसने कुछ सोचा और नलिनी को आवाज दी, नलिनी। जाते हुए नलिनी रुक गई और अनंत की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। अनंत ने उसके पास आकर कहा, आज शूट कंप्लीट होने की पार्टी है, सो यू आर इनवाइटेड, एड्रेस मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। असल में अनंत को खुद पता नहीं था कि वो इस वक्त क्या कह रहा है। शायद उसके मन में दबा एक ख्याल उस पर हावी हो गया था कि इस बार अपने दिल की बात कहने के लिए वो सब कुछ खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, और इसी रौ में बहकर उसने नलिनी से मिलने का बहाना ढूंढ लिया। अनंत की बात सुनकर नलिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसे इस तरह देखते हुए एक बार की अनंत का कॉन्फिडेंस डोल गया था, लेकिन नलिनी ने जवाब दिया, ओके। शाम हो चुकी थी। अनंत रेस्टोरेंट में बैठा कभी अपनी घड़ी पर निगाह डाल रहा था तो कभी अपना फोन चेक कर रहा था। उसने एक बार फिर से नलिनी को व्हाट्सएप पर भेजा मैसेज चेक किया। एड्रेस तो सही भेजा है, फिर अभी तक नलिनी आई क्यों नहीं? ये सोचता हुआ अनंत उसे वापस से मैसेज करने ही वाला था कि सामने से नलिनी आते दिखाई दी। नलिनी को देख अनंत के जान में जान आई। वो उसका वेलकम करने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ। नलिनी आते ही पूछा, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है? अनंत ने कहा, एक्चुअली सुशांत एंड राज बोथ आर नॉट हियर, बट मैंने सोचा कि शूट कंप्लीट होने पर एक पार्टी तो बनती है। वैसे भी मेरी टीम से तुम्हारी नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। ये सुनकर नलिनी हंसने लगी, तो तुम मेरी नाराजगी दूर करने आए हो? नलिनी की बात पूरी होते ही दोनों साथ में हंसने लगे। नलिनी ने आगे कहा, वैसे तुम्हारी टीम है ही अजीबोगरीब। एक तो वो रिसर्चर है राज, वो तो ऐसे बात करता है जैसे अभी स्कूल में पढ़ रहा हूं, और एक है अशांत, सुशांत, वो कभी किसी की सुनता ही नहीं है, और तुम भी अपनी मर्जी चलाने में कुछ कम नहीं हो। अनंत की हंसी छूट गई। वैसे तुम्हारा कहना एकदम ठीक ही है, बट मेरी टीम में भी तुम्हारा टेरर कम नहीं। उस बेचारे सुशांत को तो तुमसे बात करने में भी डर लगता है। अब हंसने की बारी नलिनी की थी। नलिनी पिछले 2 सालों से अनंत को जानती थी, लेकिन यह पहली बार था जब वो दोनों इस तरह बैठे बात कर रहे थे। नलिनी अपने काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी, इसी वजह से उसकी किसी से ज्यादा बनती नहीं थी, और यही वजह कि सुशांत उससे कन्नी काटता था। लेकिन अनंत के लिए नलिनी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर था। इस बात का अंदाजा अनंत को भी था, लेकिन उसने कभी आगे बढ़कर नलिनी से बात नहीं की। मगर आज दोपहर में जब उसने चैनल में नलिनी को देखा तो पता नहीं क्यों वो उससे बात करने के लिए मजबूर हो उठा। सच ही है कि इंसान को चीजों की अहमियत उस वक्त समझ आनी शुरू होती है जब उसके हाथ से सब कुछ छूटने लगता है। अनंत के साथ जो कुछ हाल में घटा, भले इस बारे में उसे सही तरह से याद ना हो, लेकिन उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं नलिनी का नाम बसा था, और यही वजह थी कि वो नलिनी के साथ बैठा था। दोनों के बीच काफी देर तक ऐसे ही बातें चलती रही। रात का अंधेरा छा चुका था। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। नलिनी अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी, लेकिन तभी उसने अनंत से कहा, अनंत मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। अनंत सकपक आ गया, नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो पहले का जैसा ही हूं। नलिनी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बट मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। अनंत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। नलिनी ने आगे कहा, इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो यू कैन शेयर विद मी। अनंत ने कहा, या व्हाई नॉट, श्योर। अनंत के हाव भाव से नलिनी को पक्का यकीन हो गया था कि अनंत के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। उसके जाने के बाद अनंत ने सिगरेट सुलगा ली और 1-2 कश खींचे, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन सिगरेट पीने का नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सिगरेट को फेंककर जूते से मसल दिया और अपनी एसयूवी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। इधर सुशांत और राज दोनों सुबह से पूरे शहर में उस शंकु और गोपालदास नाम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात होने के बाद भी वो खाली हाथ ही थे। आखिर में थक हार कर वो वापस से गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे कि तभी रास्ते में राज ने अचानक से सुशांत से गाड़ी रोकने को कहा, सर 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 गाड़ी रोकिए। सुशांत ने एकदम से ब्रेक लगाए। राज बगैर कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और पैदल ही थोड़ा पीछे जाकर एक शोरूम के बाहर खड़ा हो गया। सुशांत ने गाड़ी बैक की और शोरूम के बाहर रोक दी। शोरूम के बाहर सुनहरे अक्षरों में चमक रहे नाम को देखकर सुशांत की आंखों में भी चमक आ गई। ये ज्वेलरी और एंटीक आइटम्स का गोपाला शोरूम था। राज और सुशांत दोनों गोपाला शोरूम के अंदर दाखिल हो गए। कुछ घंटे बाद, सर आज आपकी सिगरेट कुछ ज्यादा नहीं हो गई है, राज ने थोड़ी धीमी आवाज में सुशांत से कहा। जिसे सुनकर सुशांत एक सेकंड के लिए ठिठका, मगर उसने राज को अनसुना करते हुए फिर से एक और सिगरेट सुलगा ली। राज मन महसूस कर रह गया। सुशांत ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए राज की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, आई कांट हेल्प इट। राज को समझ आ गया कि सुशांत पर उसकी बात का कोई असर नहीं होने वाला। उसे अनंत की याद आ गई, जो राज को कभी निराश नहीं करता था। उसने फिर से सुशांत की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो सिगरेट को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहा हो। रात के करीब 1:30 बजने वाले थे। राज ने सुशांत से पूछा, सर आपको क्या लग रहा है, गोपाला शोरूम से हमें कुछ और भी पता लग सकता है? सुशांत किसी गहरी सोच में डूबा था। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो लोग जितना जानते थे वो उन्होंने बता दिया है। राज ने कहा, बट इजंट इट स्ट्रेंज, 100 साल पहले गोपाल दास काफिला लेकर रवाना हुआ और उसका पूरा काफिला गायब हो गया। सुशांत ने जवाब दिया, स्ट्रेंज तो है, मगर ऐसा हो सकता है। 100 साल पहले कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि 100 साल बाद यह चीज रेत में से मिलने का जरूर कोई ना कोई मतलब है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। राज ने तुरंत अगला सवाल दागा, तो अब हम क्या करेंगे? सुशांत ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए जवाब दिया, देख गोपालदास यहां के राज दरबार के लिए काम करता था, तो हो सकता है कि यहां की रॉयल फैमिली को इसके बारे में कुछ पता हो, लेकिन अगर रॉयल फैमिली से जुड़ा मैटर होता तो ये बात जरूर किसी ना किसी को पता होती। एक काम करते हैं, हम यहां के म्यूजियम और दूसरी उन सारी जगहों से मालूम करने की कोशिश करते हैं जहां एंटीक आइटम्स मिला करते हैं। पर साला दिक्कत ये भी तो है कि हम किसी को ज्यादा बता नहीं सकते, वरना एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। तभी सुशांत ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाते हुए कहा, इतनी रात को किसका फोन आ गया आखिर? लेकिन वाइब्रेशंस उसके फोन में नहीं हो रहे थे, वो तो उस शंकु में हो रहे थे। सुशांत और राज दोनों भौचक्के से उस शंकु की तरफ देख रहे थे। राज ने कहा, सर कल भी अप्रोक्सीमेट यही टाइम था जब इस कोन में वाइब्रेशन हो रहे थे। थोड़ी देर में ही जोर की बिजली कड़कने की आवाज के साथ वो शंकु जोर से चमक उठा और बाहर जोर के आंधी तूफान शुरू हो गए। सुशांत ने कहा, यानी रात करीबन 1:30 बजे इस कोन में यह एक्टिविटी शुरू होती है। राज ने कहा, और सर आज के वाइब्रेशंस कल के कंपैरिजन में ज्यादा तेज थे। सुशांत ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा, यह जो भी कुछ हो रहा है सब में एक पैटर्न है, हमें इस पैटर्न को समझना है, बस हमारे पास कमी है तो वो है टाइम की। यस सर, हमें और तेजी से काम करना होगा, हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हो या कुछ और हो, लेकिन सर हम इसे क्रैक करके रहेंगे। राज ने भी एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया। सुशांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके राज, अब तुम सो जाओ, हमें काफी काम करना है। जी सर, कहकर राज सोने चला गया, जबकि सुशांत ने सिगरेट जलाने के लिए फिर से एक बार लाइटर जला लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में अपने घर पर सोए अनंत की नींद एक झटके के साथ खुल गई। उसने अपने फोन में टाइम देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। वो आंखें बंद करके फिर से सो गया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त आखिर कौन उसे बुला रहा होगा। उसने समझने की कोशिश की कि यह आवाज किसकी है। काफी सोचने के बाद भी वो इस आवाज को पहचान नहीं पाया। अब उसे डर लगने लगा था। कोई कितना ही दिलेर और जाबाज क्यों ना हो, अगर रात को 1:30 बजे कोई अनजान शख्स उसका नाम पुकारे तो ये डरने की बात ही है। हिम्मत जुटाकर अनंत बिस्तर से खड़ा हुआ और अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। उसने अपने फ्लैट की लाइट ऑन नहीं की, बल्कि अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वो धीरे धीरे हॉल में आया। वहां आने पर उसे समझ आ गया कि आवाज बाहर से आ रही है। उसका फ्लैट अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर ही था। उसने खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लग रहा था कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे लगा कि बाहर की दीवार के पास कोई है। उसने खिड़की से आवाज दी,
कौन है, कौन है वहां?
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अनंत ने गौर से देखा, उसे अभी भी दीवार के पास कोई साया नजर आ रहा था। वहां जरूर कोई खड़ा था। अनंत ने एक बार फिर से आवाज दी, लेकिन अभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार अनंत ने वहीं रखा डंडा हाथ में उठा लिया और अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑफ करते हुए फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो चुपचाप दीवार के पास उस जगह तक गया जहां वो शख्स खड़ा था। अब अनंत उसे चौंका देना चाहता था, इसलिए उसने उसके बिल्कुल पास पहुंचकर एकदम से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। लेकिन चौंकने की बारी अनंत की थी, क्योंकि जिसे वो कोई इंसान, कोई साया समझ रहा था, असल में वो तो वहां कबाड़ से भरे सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे थे, जो इस तरह से रखे हुए थे कि अंधेरे में देखने पर किसी इंसान का भ्रम पैदा कर रहे थे। अनंत की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे हंसी आ गई। अब वो रिलैक्स्ड फील कर रहा था। वो वापस अपने फ्लैट की तरफ लौटने लगा, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो कुछ देर वहीं बाहर सड़क पर टहलने लगा। तभी उसे एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। वो सड़क के किनारे हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल उससे कुछ दूर आकर रुक गई। अनंत को खतरे का एहसास हुआ। उसने अपने साथ लिए डंडे को टटोला। तभी उसे ध्यान आया कि उसने डंडा तो वहीं दीवार के पास ही छोड़ दिया था। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अनंत ने अपने आप को तैयार कर लिया। उस मोटरसाइकिल से उतरकर एक शख्स उसके पास आने लगा, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। अंधेरे के बीच भी अनंत देख पा रहा था कि उस शख्स ने अपने जेब में हाथ देकर बीड़ी और माचिस निकाल ली थी। अब उस शख्स ने होठों के बीच बीड़ी दबाकर जलती हुई माचिस की तीली से उसे जलाना शुरू किया। अनंत की निगाह माचिस की तीली की रोशनी में उसके चेहरे की तरफ गई। अनंत को लगा कि वो तो शख्स को जानता है। ये तो लेकिन अनंत चाहकर भी उस शख्स का नाम याद नहीं कर पा रहा था। न जाने क्यों अनंत को डर लगने लगा। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। तभी उस शख्स ने अनंत को आवाज दी,
पिएगा?
अनंत उसकी बात नहीं समझ पाया, इसलिए उसने कहा, जी? उस शख्स ने रौबीली आवाज में कहा,
मैं कह रही हूं, बीड़ी पिएगा? पिएगा बीड़ी?
आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 3, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।